नमस्कार, आज हम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के एक अत्यंत कह सकते हैं सामयिक उद्बोधन पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं। उद्बोधन का नाम है विषम परिस्थितियों में हमारे दायित्व।
जी,
ये उनके एक प्रवचन का अंश है और हमारा लक्ष्य है कि आज के इस चुनौतीपूर्ण दौर में हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्यों पर उनके जो गहरे विचार हैं उनको समझें, उनसे मार्गदर्शन लें।
बिल्कुल, और ये विषय आज के समय में बहुत बहुत ज्यादा प्रासंगिक है।
वंदनीय माता जी शुरुआत एक बहुत ही सटीक उपमा से करती हैं। जैसे वो कहती हैं कि बुखार सिर्फ तापमान नहीं बढ़ाता,
हाँ,
बल्कि शरीर में कई और तकलीफें ले आता है। तो वैसे ही आज का ये जो विषम समय है वो भी अपने साथ पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय स्तर पर कई जटिल समस्याएं लेकर आया है।
बिल्कुल सही कहा। और माता जी इसे केवल एक कठिन दौड़ नहीं मानती, बल्कि वो इसे युग संधि के एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखती हैं।
युग संधि मतलब?
हाँ, युग संधि यानी एक ऐसा महत्वपूर्ण समय जब एक युग समाप्त हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है। तो जाहिर है इसमें बड़ी उथल पुथल होंगी, चुनौतियां होंगी, लेकिन ये आध्यात्मिक विकास और बदलाव का एक बहुत बड़ा अवसर भी है।
वो हमें उसी तरह जगा रही है जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया था युद्ध के लिए, जब वो कर्तव्य से थोड़ा विमुख हो रहा था।
अच्छा,
तो ये सिर्फ बाहरी चुनौतियों से लड़ने की बात नहीं है ना? मुझे ऐसा लगा कि वंदनीय माता जी का जोर तो आंतरिक संघर्ष पे कहीं ज्यादा है।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है।
बिल्कुल,
उनका स्पष्ट कहना है कि असली लड़ाई तो अपने भीतर के कौरवों से है।
भीतर के कौरव?
हाँ, मतलब हमारी जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, हमारा स्वार्थ, हमारी वो भोगवादी इच्छाएं, वो कहती हैं कि अगर हम गुरुदेव से जुड़े होने का मान रखना चाहते हैं तो हमें इन अंदर के दुश्मनों के खिलाफ खड़ा होना ही होगा। परमार्थ के लिए स्वार्थ का त्याग करना, असल में यही अर्जुन बनना है। ये केवल बाहरी परिस्थितियों से जूझना नहीं है, बल्कि ये तो आत्मशुद्धि की एक अनिवार्य प्रक्रिया है एक तरह से।
तो पहला बड़ा सबक ये हुआ कि बाहरी मुश्किलों से निपटने की शुरुआत अपने अंदर सुधार और दृढ़ता लाने से होती है।
जी,
और फिर आता है सामूहिक प्रयास का महत्व है।
जी,
इस पर भी वंदनीय माता जी काफी जोर देती है ना?
निश्चित रूप से। वो याद दिलाती हैं कि बड़े परिवर्तन या महान कार्य कभी अकेले संभव नहीं हुए। देखिए, शांति कुंज का जो स्नेह है, प्यार है, प्रेरणा है, वो एक चुंबक की तरह लोगों को खींचता है, लेकिन काम पूरा होता है सामूहिक प्रयास से।
जैसे?
जैसे भगवान राम के साथ रींच वानरों की पूरी सेना थी, बुद्ध का संदेश फैलाने के लिए आम्रपाली और अंगुलीमाल जैसे लोग थे जिनके हृदय बदल गए थे, गांधी जी के एक आवाहन पर लाखों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। तो शक्ति बेशक प्रेरणा के स्रोत में होती है जैसे बुद्ध या गांधी, पर उसका प्रभाव तो अनुयायियों के संगठित और समर्पित प्रयास से ही फैलता है, दिखता है।
इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी अपने छोटे छोटे स्वार्थों को, लोभ और मोह की जो ये अदृश्य जंजीरें हैं, इनको तोड़कर एक बड़े उद्देश्य के लिए, लोक मंगल के लिए संगठित होना होगा। पर ये आसान तो नहीं लगता?
बिल्कुल आसान नहीं है। इसीलिए वंदनीय माता जी साफ करती हैं कि इन विषम परिस्थितियों में हमारा कर्तव्य क्या है। वो कहती है हमें निष्क्रिय नहीं रहना है, चुप नहीं बैठना है, हमें टकराना है, बुराई का संगठित रूप से दमन करना है और जो सही रास्ते पर चल रहे हैं उनका हौसला बढ़ाना है।
टकराना, दमन करना, हौसला बढ़ाना।
हाँ, क्योंकि अगर हम आज चुप रहे, उदासीन रहे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें धिक्कारेंगी। वो कहेंगी कि जब समय था तब हमने अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाया।
तो इसके लिए मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा, मतलब प्रेरणा कहाँ से लें? वंदनीय माता जी गुरुदेव की किन बातों को याद दिलाती हैं?
वो गुरुदेव की तीन मुख्य शिक्षाओं पर बल देती हैं। पहली, समझदारी, यानी विवेकपूर्ण तरीके से स्थिति को समझना, उसका विश्लेषण करना।
दूसरी,
जिम्मेदारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिम्मेदारी सिर्फ अपने परिवार की नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति भी, अपने कर्तव्यों को पहचानना और निभाना।
और तीसरी
बहादुरी, यानी चुनौतियों का सामना करने का साहस। जैसे हनुमान जी ने दिखाया था, समुद्र लांघते हुए, लंका जलाते हुए, वो पराक्रम हमें बुराइयों से लड़ने के लिए विचारों का, सिद्धांतों का, सद्भावना का प्रयोग करना है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्याय के प्रतिकार के लिए दृढ़ भी होना होगा।
और प्रेरणा के लिए वो स्वयं गुरुदेव के जीवन का उदाहरण भी तो देती हैं। उनका वो 18 घंटे का कठोर श्रम, और उसके अलावा उनकी उपासना। यह हमें याद दिलाता है कि हमें गुरुदेव से या ईश्वर से मांगना क्या चाहिए।
सही कहा, बिल्कुल सही।
अक्सर हम क्या मांगते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं, धन दौलत, यही सब। वंदनीय माता जी कहती हैं कि ये तो कांच के ठीकरे हैं, क्षणभंगुर हैं। हमें ईश्वर से, गुरुदेव से शक्ति मांगनी चाहिए, साहस मांगना चाहिए, पुरुषार्थ और विवेक मांगना चाहिए। ये जीवन के असली हीरे हैं जो चरित्र निर्माण में और परमार्थ में सहायक होते हैं।
जैसे हनुमान जी से कोई सांसारिक चीजें नहीं मांगता।
हाँ, उनसे उनका पराक्रम, उनकी भक्ति, उनकी निर्भयता मांगी जाती है। माता जी कहती हैं कि गुरु जी की जो ज्ञान अग्नि है, अगर उसकी एक चिंगारी भी हमारे जीवन में आ जाए तो वो हमें बैठने नहीं देगी, वो हमें लगातार शुभ कामों की ओर प्रेरित करती रहेगी।
ये बहुत गहरी बात है, सिर्फ भौतिक चीजों से ऊपर उठकर आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करना। अच्छा, इसके साथ ही वंदनिया माता जी कुछ सामाजिक कुरीतियों पर भी सीधी चोट करती हैं।
हाँ, वो समाज में फैली बुराइयों, खासकर दहेज प्रथा, छुआछूत और लिंग भेद के प्रति हमें सचेत करती हैं, सक्रिय होने का आह्वान करती हैं। वो पुरुषों से विशेष रूप से आग्रह करती हैं कि वे दहेज का खुलकर विरोध करें। उनका एक बहुत मार्मिक कथन है कि अपनी बेटियों को उन भेड़ियों यानी दहेज के लोभियों के हाथ न सौंपें।
भेड़ियों, कितना सख्त शब्द है।
हाँ, क्योंकि स्थिति उतनी ही गंभीर है। वो कहती हैं ये केवल पारिवारिक नहीं बल्कि एक राष्ट्रव्यापी जिम्मेदारी है।
और नारी के सम्मान और उत्थान पर उनका क्या दृष्टिकोण है?
वो कहती हैं कि नारी को बेवी तुल्य समझें, उसके त्याग और समर्पण को पहचानें, उसे शिक्षित करें, उसे आगे बढ़ने के अवसर दें, क्योंकि एक संस्कारी और सशक्त नारी ही परिवार और समाज को सही दिशा दे सकती है। और देखिए, गुरुदेव ने स्वयं वंदनीय माता जी को अपने हर काम में बराबरी का स्थान दिया। ये अपने आप में सबसे बड़ा उदाहरण है। ये नारी शक्ति के जागरण का एक स्पष्ट संदेश है।
बिल्कुल। अंत में वंदनीय माता जी एक बहुत ही भावुक आश्वासन भी देती हैं।
हाँ, वो कहती हैं कि शारीरिक रूप से उपस्थित न होने पर भी वो मन और आत्मा से हमेशा अपने अनुयायियों के साथ है। और मार्गदर्शन के लिए वो एक सरल उपाय बताती हैं। रोज केवल 5 मिनट निकालकर शांति कुंज का मानसिक स्मरण करें, माँ गायत्री का, और वहां जो अखंड दीपक प्रज्वलित है उसका ध्यान करें।
उस अखंड दीपक का ध्यान क्यों महत्वपूर्ण है, उससे क्या मिलेगा?
वो अखंड दीपक जो लगातार जलता रहता है, वो गुरुदेव की चेतना और उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। तो उससे हमें प्रकाश मांगना है, हौसला मांगना है, आध्यात्मिक शक्ति मांगनी है, ताकि हम केवल अनुयायी न बने रहें बल्कि गुरुदेव के लोक कल्याण के उस विशाल कार्य में सक्रिय हिस्सेदार बन सकें, अपने देश और समाज के उत्थान में अपना योगदान दे सकें।
तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि वंदनिया माता जी का ये उद्बोधन सिर्फ एक प्रवचन नहीं है, ये एक आह्वान है, एक तिलक है जो हमारे माथे पर लगकर हमें लगातार हमारे शुभ कर्तव्यों और ऊंचे जीवन उद्देश्यों की याद दिलाता रहे।
हाँ, बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न हम छोड़ जाते हैं। वंदनीय माता जी के बताए अनुसार हमारे अपने भीतर वो कौन से कौरव हैं, हमारा स्वार्थ, हमारा भय, हमारी नकारात्मकता, जिन्हें हमें सबसे पहले परास्त करना है, और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम आज ही, अभी से कौन सा एक छोटा सा सकारात्मक कदम उठा सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।